والأمام المرسلين والمؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हमारी सूरह अनआम की आयात नंबर 99, 100, 101 और 102 चल रही हैं। कल इनका तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था और क्लास तफसीर पढ़ना हमने शुरू कर दिया था। आखिरी बात जो हम कर रहे थे वो ये कि हज़रत मुफ्ती शफी सॉरी बल्कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि खुलासे तफसीर उनकी तफसीर बयानुल कुरआन से यहाँ पर हज़रत ने नकल किया है, तो उन्होंने फिर ये फरमाया अपनी इस मुख्तसर तफसीर के अंदर कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सब कुछ एक पानी से, एक ही पानी, एक ही मिट्टी से इतनी मुख्तलिफ किस्म की नबातात जिनके रंग रूप जायका फवाहिद फवाद बेहद मुख्तलिफ हैं, किस कदर अजीब करिश्मा कुदरत है। तो आज के दौर में एक इंसान को मजीद धोखा साइंस के नाम पर, ठीक है, साइंस के नाम पर का मतलब ये होता है कि असल में तो मसला उसका नहीं है लेकिन उसका नाम लेकर के मसला बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ना, तुम मेरे नाम पे गलत काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से साइंस के नाम पे इंसान को ये धोखा लगा दिया शैतान ने कि ये कौन सा करिश्मा कुदरत है, ये कौन सा जो है वो अनहोनी बात है, ये तो हमें सब कुछ समझ में आ गया अब, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। और समझ में आना तो पुरानी बात हो गई, अब तो हम खुद भी जो है ये सब कुछ कर सकते हैं और तब्दीलियां कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो भाई ये बेवकूफ़ी की अलामत होती है, अंधेपन की अलामत होती है। आगे अल्लाह ताला जो है वो इसको भी एड्रेस करते हैं कि जो अंधा बन गया तो उसका अपना ही नुकसान है, किसी और को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो वो शैतान अंधा बना देता है, वजह खाली ये होती है कि हमने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करी होती है, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करी होती है, हमने जो है वो अपने आप को या अपनी औलादों को जो है वो अमेरिकन सिस्टम में या ब्रिटिश सिस्टम में या किसी और गैर मुस्लिम काफिर सिस्टम के अंदर डाला होता है, वहां से उनकी ऐसी जहन साजी हो जाती है, ऐसे उनका जो है वो दिमाग दिमाग बन जाता है कि उनको जो है ना वो कुदरत अपने अंदर नजर आनी शुरू हो जाती है, अपने जैसे इंसानों में कुदरत नजर आनी शुरू हो जाती है, अपनी मेहनतों में कुदरत और ताकत नजर आनी शुरू हो जाती है। हालांकि होती होती कोई नहीं है, एक जरा सा कोई चपेड़ मार दे तो यूं जमीन पे पड़े हुए होंगे, है ना, एक वायरस आ जाए तो ऐसे जो है वो अधमुए हुए पड़े हुए होंगे कि किसी काबिल नहीं रहेंगे, कोई कुदरत नहीं होती। लेकिन धोखा लग जाता है इंसान को, कुदरत का धोखा लग जाता है, शैतान लगा देता है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह फिर शैतान के हवाले कर देता है इंसान को। तो यही सारे का सारा सीन होता है और कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो आगे फरमाए तो इब्तिदा कहाँ से होती है कि अल्लाह के नबी के तालीमी निज़ाम को ठोकर मार के, अल्लाह के नबी के तालीमी निज़ाम को पसे पुश पुश डाल करके और अल्लाह के नबी से तालीम हासिल करने की बजाय दूसरों से तालीम हासिल करके, ये हमारी एक ऐसी अजीम तरीन कोताही है, अजीम तरीन जुर्म है कि जिससे फिर तमाम के तमाम जराइम जो है ना फिर वो इससे पैदा होते हैं, ठीक है, वो इससे पैदा होते हैं अल्लाह के नजीम अल्लाह के नबी की नाकदरी करके, ठीक है ना। वो चिरागा कर रहे हैं तो हरा गुंबद लगा रहे हैं, तो एक से एक तमाशे कर रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं और जो है वो नाते पढ़ रहे हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं अल्लाह के नबी के नाम पर, लेकिन तालीम अल्लाह के नबी से नहीं हासिल करनी, अल्लाह के नबी के दुश्मनों से हासिल करनी है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी नाकदरी है कि जिससे फिर सारी सजाएं जो है ना इसकी वजह से मिल रही होती हैं जो कि मिल रही हैं। बहरहाल आगे चलें कि फिर अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि फिर हमने, यानी जिसका तर्जुमा होता है कि हम फिर हमने उस कोंपल से जो अव्वल जमीन से निकलती है जिसको बाद मकामात में सुई या खूंटी कहते हैं और रंग में वो जर्द होती है, यानी जो बीज से ना फिर एक सबसे पहले छोटा सा एक पौधा निकलता है वो आमतौर पे वो यानी जर्द रंग का होता है, यानी पूरी ग्रीन ग्रीननेस भी अभी तक उसके अंदर नहीं आई होती है। तो उसको सुई या खूंटी वगैरह टाइप के नाम मुख्तलिफ दिए हुए होते हैं। फिर हमने उससे सब्ज शाख निकाली, तो वो थोड़ी सी बड़ी होने के बाद फिर वो सब्ज बनती है, ग्रीन ग्रीन उसके बाद बनती है, जब वो फोटोसिंथेसिस वगैरह का सारा तो सिस्टम जो नाम वाम दिए हुए हैं, फोटोसिंथेसिस हो गया, तो उसके बाद फिर उसके अंदर ग्रीननेस आनी शुरू होती है कि उस शाख से हम ऊपर तले दाने चढ़े हुए निकालते हैं। फअखरजना बिही नबात कुल्ल शैइन फअखरजना मिन्हु खदरन, खदर यानी सब्स, नुखरिजु मिन्हु हब्बम मुतराकिब, मुतराकिबा, हम चढ़ने वाले एक के ऊपर एक चढ़ने वाले जो है ना वो उनमें से दाने निकालते हैं। तो ये तो गल्लों की कैफियत हुई ना, क्योंकि ये इस तरह से जो है ना ये आमतौर पर ग्रेन्स वाले जो होते हैं पौधे, तो उनके अंदर इस तरीके से ये तरतीब चलती है। ठीक है, तो ये तो गल्लों की कैफियत है जिसका जिक्र इजमालन फालिकुल हब्बी व नवा में आ चुका है, पीछे जो हमने आयात पढ़ी थी। तो और खजूर के दरख्तों से यानी नखल जिनको कहते हैं कुरान मजीद में भी क्या था वो लफ्ज के, ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون, ठीक है, तो खजूर के दरख्तों से यानी उनके गप्फे में से खोशे निकलते हैं जो मारे बोझ के नीचे को लटके जाते हैं। तो खजूर के दरख्तों में खुसूसन जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं या सऊदी अरब में रहने वाले, तो ये खजूर के दरख्त ही दरख्त, हर तरफ खजूरी के दरख्त होते हैं, तो वो देखते हैं हर साल के उनके अंदर किस तरह से जो है ना फिर फल आने शुरू होते हैं, लंबी लंबी जो है वो टहनियां बाकायदा बनती हैं जिनमें पत्ते नहीं लगते बल्कि उनके अंदर खजूर लगते हैं छोटे छोटे, जिस तरह बिल्कुल आम की छोटी छोटी सी गुठलियां, वो आम की जो कैरियां बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में आम की कैरियां शुरू होती है ना, फिर वो बड़ी होती रहती हैं, बड़ी होती रहती हैं, बड़ी होती रहती है, उसी तरह से खजूर बिल्कुल डॉट्स की शक्ल में वो शुरू होते हैं उन येलो डालियों के ऊपर निकलने। तो उनके गप्पों में से खोशे निकलते हैं यानी वो डालियां निकलती हैं जो मारे बोझ के फिर जब वो मोटे बड़े हो जाते हैं खजूर, तो फिर वो नीचे को लटक जाती हैं। और इसी पानी से हमने यानी चूंकि पानी का तذکرہ अल्लाह ताला ने शुरू में किया था ना, वो जाल वह हुवा अल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई माअ, तो उस पानी से फअखरजना बिही, उस पानी को इस्तेमाल करते हुए हमने अंगूरों के बाग पैदा किए। ठीक है, यानी ये अंगूरों के बाग की जो उसको जिक्र आया तो वो पीछे जाके पानी से ही कनेक्ट हो रहा है ना, ये पानी की मदद से, उजालना बिही सॉरी फअखरजना बिही जन्नात मिन अनाबिन वज़ैतून व रुमाना। ठीक है, तो अंगूरों के बाग पैदा किए, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जो कि बाग़े अनार और बाग़े जैतून फल की सूरत शक्ल व मकदार व रंग वगैरह के एतबार से एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, और बाज़े एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते हैं। बज़ाहिर देखने में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होता और कुछ के अंदर बज़ाहिर देखने में भी फर्क नजर आ रहा होता है, तो जरा हर एक के फल को तो देखो जब वो फलता है, उन्जुरु इला समरी ही इजा असमरा, इजा का मतलब जब, तो जब वो फल देता है वह यन्उही और जब और उसके पकने को देखो, यन्उही ही उसका पकना। कि उस वक्त बिल्कुल यानी जब वो फल देता है कि उस वक्त बिल्कुल कच्चा बदमजा नाकाबिले इंतफा होता है, यानी फल जब शुरू होता है ना तो वो कच्चा होता है बदमजा होता है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा कैरी वाला काम ले सकते हैं, खट्टा खट्टी कैरी, या ये कि पपीता, राइट, जब वो कच्चा पपीता होता है तो फिर उसके अंदर टेस्ट नहीं होता, लेकिन उससे आप फिर दूसरा वाला काम ले सकते हैं, फूड क्या मीट टेंडराइजर का काम कच्चे पपीते से लेते हैं। तो बहरहाल हजरत ने यहाँ पे मीट टेंडराइजर को जो है वो इग्नोर करते हुए बस इतना लिख दिया है कि नाकाबिले इंतफा होता है, यानी आप उसे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते। तो वो पपीते से खाली मीट टेंडराइजर का काम लेते हैं ना, कच्चे अनार से को थोड़ी आप कोई काम ले रहे होते हैं, या कच्चे जैतून से तो आप काम ही ले रहे होते हैं आमतौर पर, तो ऐसा तो नहीं सुना कभी। और फिर उसके पकने को देखो, यानी उन्हीं को देखो कि उस वक्त सब औसाफ में कैसा कामिल हो गया। यानी ये तफसीरन बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि उसके पकने को देखो, क्योंकि जब उसके ऊपर तुम गौर करोगे तो पता चलेगा कि ये कैसी एक बदमजा चीज जो है वो कैसे अपनी सिफतों में कामिल हो गई। यानी अल्लाह ने इसके अंदर फल के अंदर क्या सिफतें रखी हैं, खुशबू, तो बेहतरीन खुशबू आ जाती है, बेहतरीन एक रंग उसके अंदर आ जाता है। उसकी सिफत में एक सिफत है जायका, असल चीज जो खाने के ऊपर वो तो जायका होता है ना, आप रंग तो नहीं खा रहे होते, खुशबू तो नहीं खा रहे होते, वो तो खाने से पहले की चीजें होती हैं, लेकिन खाने के बाद तो फिर जायका जो है वो आपको फायदा देता है, और उससे भी ज्यादा गजाइत उसके अंदर जो नरिशमेंट होती है। तो इन तमाम सौफात सिफात में औसाफ में ये कैसा कामिल हो गया, ये भी खुदा की कुदरत का जहूर है, ठीक है ना। यानी कच्चा है तो उसकी खुशबू कहाँ छुपी हुई होती है, कि उसके अंदर कहीं अगर आप अंदर चले जाएं उसकी क्या कहते हैं उसके मॉलिक्यूल लेवल पे चले जाएं, उसकी जीन के लेवल के ऊपर चले जाएं, तो वो आपको कहीं पर खुशबू सुंघाई देती है। माइक्रोस्कोप से आप उसकी जीन्स देख रहे हैं, राइट, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो आपको उसकी खुशबू आ रही होती है, माइक्रोस्कोप से उसका आपको रंग नजर आ रहा होता है, रंग भी नजर नहीं आ रहा होता, हालांकि कितने स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप्स होते हैं। कच्चे फल के अंदर ना खुशबू सुंघाई दे रही होती है, ना रंग नजर आ रहा होता है, ना कोई जायका जो है वो उसके अंदर, कि भाई आप उनके जायकों को इकट्ठा कर कर करके जो है ना वो चले कोई बड़ा सा कोई पीस बना लें फिर उसको आप खाएं तो आपको जायका आ जाएगा, नहीं होता है इनके अंदर कुछ भी। लेकिन यही फल जब पक जाता है तो इसमें खुशबू भी आ जाती है, जायका भी आ जाता है, और रंग भी आ जाता है। कहाँ से आ जाता है भाई, कहाँ से आ जाता है, अल्लाह, राइट। अच्छा, इन मामलात के अंदर ये भी नहीं कि फरिश्ता आता है, फरिश्ता उनके अंदर जो है वो रंग डालता है, फिर फरिश्ता खुशबू डालता है, फरिश्ता जो है वो जायका डाल रहा होता है, अल्लाह आलम, हो सकता है फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ताला काम करवा रहे हो, लेकिन कभी हमने सुना नहीं कि फरिश्ता वो बारिश के कतरे तो फरिश्ता लेके आ रहा होता है, और फरिश्ता जो है वो पत्ते को तो हिला रहा होता है, ठीक है ना, ये तो हदीस से साबित है। लेकिन क्या हर हर फल के अंदर फरिश्ता जो है वो खुशबू भी डाल रहा होता है? अच्छा, अगर डाल भी रहा होता तो भी क्या था भाई, अल्लाह डलवा रहा है ना फरिश्ते के जरिए से, ठीक है ना। बहरहाल कोई जानवर या कोई इंसान या कोई जिन तो ये काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो या तो अल्लाह ताला बराह रास्त खुद कर रहे होते हैं या किसी फरिश्ते को इस्तेमाल करते हुए कर रहे होते हैं। कुछ काम ऐसे हैं ना जो कि अल्लाह ताला फरिश्ते से भी नहीं करवाते बल्कि खुद करते हैं, जैसे किसी शहीद की रूह को कब्ज करना, हर रूह को इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज कर रहे होते हैं, जो शहीद होता है अल्लाह के रास्ते में, जो जान की कुर्बानी देने वाला शहीद मैदान जंग के अंदर, उसकी रूह जो है वो अल्लाह ताला खुद कब्ज कर रहे होते हैं। इससे क्या पता चला कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला बराह रास्त खुद कर रहे होते हैं, इवन फरिश्ता बीच में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से इंसान के दिल में जो अल्लाह का जिक्र होता है उसको फरिश्ता भी नोट नहीं कर सकता, फरिश्ता भी नोट नहीं कर सकता, जिक्र कलबी को, जिक्र लिसानी को तो फरिश्ता जो है वो अपने पास नामे अमाल में लिख रहा होता है, जिक्र कलबी को नहीं लिख सकता, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि एक खुशबू आ रही थी तो मैंने उस खुशबू के आने को जो है ना वो नोट कर लिया, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, अल्लाह ताला को पता होता है, और अल्लाह ताला ही जिक्र कलबी का जो है वो फिर हिसाब कर रहे होते हैं कयामत के दिन, उसके बदले में फिर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला बराह रास्त भी बगैर फरिश्तों के सबब को इस्तेमाल किए हुए भी कुछ काम कर रहे होते हैं, तो अल्लाह आलम ये खुशबू, ये रंग, ये जायका, ये गजाइत, ठीक है, उसमें पहले से नहीं आ रही होती है, बल्कि अब जीन्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम यही कहेंगे कि भाई अल्लाह ताला ने जो है वो हिसाब किताब के लिए जीन्स रखी है उसके अंदर, ठीक है, ताकि तुम जो है ना वो जब अपने तुम गुमराह होने के लिए तुल जाओ, राइट, ए इंसान जब तुम गुमराही पर तुल जाओ तो फिर तुम जो है ना इन जीन्स को स्टडी करना और इनके जरिए से तुम मैनिपुलेशन करके कोई फल बना लेना कि जिसका जो है ना वो रंग भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा और इसका जो है वो टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा और इसका जो है ना वो खुशबू भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, या हो सकता है हो ही ना खुशबू उसके अंदर, है ना, क्योंकि आमतौर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फल वल होते हैं उनके अंदर रंग तो होता है बड़ा मजे का, जबरदस्त किस्म का रंग तो होता है, जायका भी हो जाता है कुछ ना कुछ चेंज करके, लेकिन खुशबू उशबू नहीं आती उनके अंदर। तो ये गुमराही के असबाब भी तो अल्लाह ने पैदा किए हैं ना, गुमराही के असबाब क्या खुद से पैदा हो गए? गुमराही के असबाब भी अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन किसको गुमराह करते हैं? कि जो कि ऐंठता है, ऐंठता, हमारी वालदा ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल करती थी, ऐंठन, राइट, जो ऐंठता है ना, तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने गुमराही के असबाब रखे हुए, फिर वो गुमराही के असबाब के हवाले, ठीक है। तो वो शैतान भी गुमराही का एक सबब है, नफ्स अम्मारा भी गुमराही का एक सबब है जो अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, और जेनेटिक्स जीन्स जो हैं ये भी फिर ऐसे लोगों को गुमराह करने का सबब बन जाती है। वो समझते हैं कि हमने मैनिपुलेशन कर ली, हमने बना लिया, हमने ये कर लिया, धोखा लग जाता है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से धोखा लगता है ना फिर लोगों को। एनीवे क्या लिखा उन्होंने, जब हम कोई नेकी का इरादा दिल में करते हैं तो क्या वो फरिश्ते को पता चल जाता है और फिर शैतान उसकी नेकी से कैसे उस नेकी से कैसे रोकने लगता है अगर शैतान को पता नहीं चलता? नहीं, शैतान हर चीज से नहीं रोकता ना, ठीक है, शैतान खाली कोई थोड़ी है गुमराही का सबब, नफ्स भी तो है ना इंसान का, ठीक है। तो जब अंदर ख्याल पैदा होता है ना नेकी का, तो नफ्स जो है जब खबीस होता है, आपने उसकी तरबियत नहीं करी हुई होती है, आपने उसको जो है वो उसकी धुलाई नहीं करी होती, धुलाई समझते हैं ना, धुलाई पिटाई के लिए भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज धुलाई, और तस्किए के लिए भी आप धुलाई का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोया के पिटाई से धुलाई होती है, ये पिटाई से तस्किया होता है, धुलाई से तस्किया होता है, ठीक है। तो नफ्स की अगर धुलाई नहीं की होती है ना, तो फिर नफ्स को जो है ना ये चीजें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। नेकी का इरादा वो तो अपने अंदर की चीज है ना, वो कोई बाहर की मखलूक को थोड़ी है, शैतान तो बाहर की मखलूक है, बेशक वो करीब बहुत हो, करीन के तौर पर, करीन तो करीब चीज को कहते हैं ना, तो शैतान को फहुआ लहू करीन, अल्लाह ताला शैतान को करीब की चीज बना देते हैं, बट स्टिल इट्स नॉट पार्ट ऑफ अस, वो हमारा हिस्सा नहीं है शैतान, वो एक अलग मखलूक है। लेकिन नफ्स क्या है? नफ्स हम ही हैं, हमारा हिस्सा है, वो कोई बैरूनी चीज नहीं है, ठीक है। तो जब नफ्स जो है वो गालिब होता है, नफ्स जो है वो अम्मारा होता है ना, तो अंदर जो नेकी की कोई चीज शुरू भी हो रही होती है ना, तो वो फिर क्या करता है, जंग लड़ता है, जंग है? जंग शुरू हो जाती है, यानी इल्म अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि हाँ भाई गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये बात सही नहीं थी, ये नुकसानदेह बात थी, ये गलत है। तो अब ये दिल में यानी ये अकल के अंदर ये ख्याल आया कि ये गलत है यार, ठीक है, तो मुझे जो है ना वो छोड़ देना चाहिए इस चीज को। तो अकल भी तो अंदर की चीज है ना हमारी, तो दिल में अकल में ख्याल है, उसको हम कह देते हैं कि दिल में ख्याल है, लेकिन अकल में असल में ख्याल आ रहा होता है ये छोड़ दो यार इस चीज को। नफ्स कहता है नहीं मैं नहीं छोड़ने दूंगा इसको, ठीक है ना, ये कैसे कि इतना अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे तो लज्जतें मिल रही हैं, मुझे तो मजे मिल रहे हैं इसके अंदर, और ये जो है ना वो अब छोड़ने के ऊपर वो फिर फाइटिंग शुरू कर देता है, और जब तक वो ज्यादा ताकतवर होता है तो वो फाइटिंग में कामयाब हो जाता है। अकल साहिब जो है या अकल साहिबा जो है वो चाह रही है नहीं करे, छोड़ दे, नेकी का काम कर ले, नफ्स ज्यादा मजबूत है वो हरा देता है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, नफ्स की धुलाई करनी पड़ती है और कल्ब की जो है ना वो सफाई करनी पड़ती है, ताकि जो है वो कल्ब साहिब जो है वो जरा ज्यादा बड़े हो जाए, वो ज्यादा ताकतवर हो जाए, जिक्र के जरिए से, अजकार और बात मान करके अल्लाह ताला की, यानी उसको रूहानी रजा पहुंचा करके कल्ब को मोटा करना होता है, नफ्स को पतला करना होता है, कल्ब को मोटा करना होता है। अब जब कल्ब मोटा हो जाता है ना, फिर अकल के अंदर जब नेकी का ख्याल आता है, फरिश्ते के वास्ते से अल्लाह ताला नेकी का ख्याल डालते हैं, तो फिर वो एक्चुअली उस पर अमल भी कर पाता है, क्योंकि अब रोकने वाला नफ्स जो है ना वो पतला हो गया, और उकसाने वाला नेकी पर उकसाने वाला कल्ब जो है ये मोटा हो गया, ये ताकतवर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे अंदर की ये एनाटॉमी है। ठीक है, ये एनाटॉमी, या ये इसको आप कह रहे हैं फिजियोलॉजी, जो भी इसका नाम लें आप डॉक्टरी की जबान में, ये है अंदर का सिस्टम। बहरहाल, तो फरिश्ता और शैतान जो है ना, ये तो बैरूनी चीजें हैं, बेशक करीब हों लेकिन हैं बैरूनी चीजें। बहरहाल, तो अच्छा सवाल किया आपने, चले आगे चलते हैं कि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हर बात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अच्छा, तो ये भी, ये यानी ये जो फल अपने औसाफ में कामिल हो गया, तो ये भी खुदा की कुदरत का जहूर है, जाहिर हो रही है ना खुदा की कुदरत, के कहाँ से आ गया यार इसके अंदर। ठीक है, जीन्स के अंदर तो खुशबू नहीं आ रही थी, अब कहाँ से खुशबू आ गई। इन उमूर में भी दलाइल तौहीद के मौजूद हैं, कि कोई ये नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कर रहा सिवाय किसके, अल्लाह, सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के पास सिर्फ अल्लाह। ठीक है, तो ये तौहीद इसी को तो कहते हैं कि हर चीज अल्लाह से जाकर के जुड़ जाए, इसी को तो तौहीद कहते हैं। ठीक है, तो ये दलाइल तौहीद है, ये पॉइंट करते हैं तौहीद यानी अल्लाह की जात की तरफ, और गोया एतबार तबलीग के सबके लिए हैं, मगर इंतफा के एतबार से उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ईमान रखते हैं। लिकौमी युमिनून, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने बीच में तफसीर इंसर्ट करी कि जो ईमान लाने की फिक्र रखते हैं। क्या मतलब कि अभी ईमान है नहीं उनके पास, लेकिन फिक्र लगी हुई है उनको। ठीक है, क्या मतलब भाई, ईमान है तो नहीं लेकिन फिक्र लगी हुई है। या दूसरा, जो कुरान मजीद के अल्फाज के अंदर जो बात मौजूद है वो क्या, ईमान रखते हैं यानी ईमान ला चुके हैं, नबी पर एतमाद कर चुके हैं, या जो नबी पर एतमाद करने की फिक्र रखते हैं। ठीक है, लफ्जी एतबार से देखें तो मतलब बनेगा जो ईमान रखते हैं, नबी पर एतमाद रखते हैं, और अगर तफसीरी एतबार से देखा जाए तो क्या मतलब बनेगा कि जो के नबी पर एतमाद रखने की फिक्र रखते हैं। ठीक है, तो ईमान रखते हैं का क्या मतलब हुआ कि जब उन्होंने नबी पर एतमाद कर लिया, नबी की बात को तस्लीम कर लिया, इकरारों बिल्लिसानी व तस्दीकों बिलकल्ब कर ली, तो अब नबी अल्लाह के बारे में यानी जो भी बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अल्लाह की आयात है, अल्लाह की आयात है, तो वो सुन करके उनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ जारी होती है, अल्लाह की तरफ तवज्जो जारी होती है। ठीक है, क्योंकि वो नबी की बात को मान रहे होते हैं कि ये सारी की सारी अल्लाह ही की निशानियां हैं, गौर से सुन रहे होते हैं, अल्लाह याद आ रहा होता है, अल्लाह की तरफ तवज्जो जारी होती है, तो उनको फायदा हो रहा होता है। ठीक है, और जो ईमान नहीं रखते हैं तो उन तक बात तो पहुंच जाती है लेकिन वो इनकार कर देते हैं, काफिर इनकार कर देते हैं, तो उनको फायदा नहीं हो रहा होता। ठीक है, और बाकी ये कि ईमान लाने की फिक्र, वो हम फिर दो मैसेजेस आए हुए उनको पढ़ करके फिर उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। तो एक तो खवातीन की तरफ से क्या मैसेज आया था कि है, बेटी कहती है कि अल्लाह के जिक्र डिटर्जेंट है दिल का, अच्छी बात करती है माशाल्लाह जी, वो है पॉलिश है दिल का जो है ना, वो पॉलिश का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह के जिक्र नफ्स का डिटर्जेंट है, नफ्स का, और दिल का जो है ना वो क्या है, पॉलिश है। ठीक है, क्योंकि दिल जो है ना वो कपड़े की तरह से गंदा नहीं होता, नफ्स कपड़े की तरह गंदा होता है, तो उसको फिर डिटर्जेंट से धोना पड़ता है यानी रगड़ना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, धुलाई करनी पड़ती है, मारना पड़ता है। ठीक है ना, ये डिटर्जेंट के जरिए से जो धुलाई होती है ना इसकी, ये शेप एंड फॉर्म होती है ना। ठीक है, तो ये नफ्स के साथ करना पड़ता है, दिल के साथ ये सब नहीं करना पड़ता। दिल तो साफ ही रहता है लेकिन उसके ऊपर रस्ट आ जाता है, उसकी आउटर सरफेस के ऊपर रस्ट आ जाता है, या उसके आउटर सरफेस के ऊपर आप अपनी जुबान में कहने के मैल आ जाता है। अब रस्ट और मैल को डिटर्जेंट से नहीं धोना होता, इनको फिर इनकी सफाई करनी पड़ती है ना, ठीक है। तो रस्ट क्लीनर हो, उसके जरिए से आपको सफाई करनी पड़ती है, जो पॉलिश का नाम भी उसको दे सकते हैं, या आपको डस्टर के जरिए से उसको पोछना पड़ता है, तो उसको तस्फिया कल्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं जो कि अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, किसी और ने मर्दों की तरफ से क्या लिखा है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट दैट कल्ब एंड रूह आर द सेम थिंग। कल्ब एंड रूह आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि रूह जो है ना, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और कल्ब इसका जो है वो फोकल पॉइंट है, सबसे बड़ा, सबसे मेन फोकल पॉइंट। बिल्कुल जैसे कि एक पूरा का पूरा मुल्क होता है, ठीक है, तो वो पूरा मुल्क भी जैसे इंडिया कहला रहा है, पाकिस्तान कहला रहा है, लेकिन एक होता है उसके अंदर उसका दारुल हुकूमत, कैपिटल सिटी, ठीक है। तो वो कैपिटल सिटी भी तो मुल्क का हिस्सा ही होता है ना, लेकिन वो उस मुल्क का प्राइमरी फोकल पॉइंट होता है, वहीं पे जो है वो प्रेसिडेंट भी रहता है, अगर प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम है तो प्राइम मिनिस्टर भी उधर ही रहता है, वहीं पे पार्लियामेंट भी होती है, वहीं पे जो है वो चीफ क्या कहते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट भी होता है वहीं पे, तो वो लेकिन है वो मुल्क का हिस्सा ही। तो कभी जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो इजलास होते हैं उनके अंदर कहते हैं कि जी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशंस में बयान किया, और कभी ये भी कह देते हैं इस्लामाबाद के रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशंस में बयान किया, इस्लामाबाद के रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि वो इस्लामाबाद का तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो तो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो इस्लामाबाद क्यों कह देते हैं भाई, इस्लामाबाद बोल करके असल में पूरा पाकिस्तान मुराद दिया जा रहा है। उसी तरीके से कल्ब पूरी की पूरी रूह नहीं होता, लेकिन कल्ब बोल करके पूरी रूह भी मुराद ले ली जाती है, ठीक है। हालांकि वो पूरी रूह होता नहीं है, वो तो रूह का एक सेंट्रल फोकस पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ईमानदारी की फिक्र रखने वाले कौन लोग होते हैं कि जिनके लिए चीज फायदेमंद हो जाती है? ये वो लोग होते हैं, अगर आपसे पूछें क्या ख्याल है कि ये जो बातें हैं फलों के बारे में, अनाज के बारे में, जैतून, रुमान और बाकी जो फालकुल हब्बे व नवा वाली वाली सारी बातें जो हैं, ये ईमान लाने की फिक्र रखने वालों के लिए फायदेमंद कैसे हो जाती है? भाई जो ईमान ले आया, नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद हो गया, अब वो कुरान को अल्लाह की किताब मान रहा है, फिर तो ठीक है ना, सब बात समझ में आती है कि अब वो जो भी सुनता है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ निशानदेही हो रही है, उसको तो फायदा हो जाता है। लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने हकीमुल उम्मत, अल्लाह ताला किसी के दिलों को खोलते हैं ना, कुछ हम लोग बेचारे हम नहीं बात समझ रहे हैं कि पता नहीं किस वजह से नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह आलम, लेकिन हम समझते हैं कि हमें तफसीर की जरूरत नहीं है, हम तर्जुमा पढ़ेंगे और कुरान मजीद को समझेंगे। तो उसका पहला जवाब तो हम ये देते हैं कि भाई तर्जुमा पढ़ के आप कुरान मजीद को क्यों समझेंगे, आप अरबी क्यों नहीं सीखते, तर्जुमे के ऊपर इतना एतमाद करके क्यों बैठे हुए, तर्जुमा तो फिर किसी और ने किया है ना, नहीं, किसने किया तर्जुमा? अल्लाह ने तो किया तर्जुमा, अल्लाह ने तो सब कुछ करवाया ना, तो तर्जुमा ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह ने तो करवाया सब कुछ, तर्जुमा भी अल्लाह ने करवाया, तफसीर भी अल्लाह ने करवाई, और तशरीह भी अल्लाह ने करवाई, और फिका भी अल्लाह ने लिखवाई, लेकिन आपको तो तकलीफ है ना कि आप तफसीर नहीं पढ़ना चाहते, आप फिका नहीं पढ़ना चाहते, क्यों नहीं पढ़ना चाहते भाई? किसी इंसान ने किया है तो तर्जुमा किसने किया है फिर? तर्जुमा इंसान ने नहीं किया, तो तर्जुमा पढ़ना ये एक अजीब मुसीबत आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रही। दीनदार माशाल्लाह बहुत हो गए ना दीनदार, तो अब हर लेवल की हर हर फ्लेवर ऑफ दीनदारी चल रही है, एक दीनदारी का फ्लेवर ये चल रहा है मार्केट के अंदर कि तर्जुमा पढ़ो तुम, ताकि जो तुमसे दीन के बारे में झूठ बोले गए हैं ना, वो झूठ तुम्हारे सामने खुल जाए, ठीक है। मुझे किसी ने भेजा ये एक पैगाम था ये कहीं पे, ठीक है, तो तुम तर्जुमा पढ़ो, उसमें लिखा ये था कि कुरान तर्जुमे से पढ़ो ताकि जो दीन के बारे में झूठ बोले गए हैं वो तुम्हारे सामने खुल जाए। तो भाई पहला सवाल ये बनता है कि हाउ डू यू नो कि तर्जुमे के अंदर झूठ नहीं है, तर्जुमे पे क्यों इतना ट्रस्ट हो गया तुम्हारे तुम्हारे पास, किसने तर्जुमा किया, तुमने खुद किया तर्जुमा किया? ترجمہ بھی کسی مولوی نے کیا ہے نا یا کسی سائنسدان نے کیا ہے ترجمہ جس کے اوپر تمہارا اعتماد تھا؟ مولوی نے کیا ترجمہ؟ عام طور پر عربی زبان سیکھنے والے سمجھنے والے جو ہیں آج کل کا چلو جو بھی ہوگا وہ بھی کوئی مولوی کی قبیل کی کوئی دوسرا انسان ہوگا نا جس نے کہ ترجمہ کیا. ٹھیک ہے, داڑھی 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 منڈا ہوگا, سوٹ کوٹ پہنا ہوا ہوگا, لیکن ہے تو دوسرا انسان نا جس نے ترجمہ کیا. وائی آر یو ٹرسٹنگ ہم؟ آن واٹ بیسس آر یو ٹرسٹنگ ہم؟ کیا بیسس ہے آپ کی کہ آپ اس کو ٹرسٹ کر کے اس کے ترجمے کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں مجھے حقیقت مل جائے گی اور جھوٹ جو ہے میرے سامنے کھل جائے گا؟ وائی, ہاؤ, رائٹ؟ تو اگر تمہیں خود ہی سب کچھ سمجھنا ہے تو خود ہی علم حاصل کرو نا, پھر عربی زبان کا علم حاصل ہوا نا, قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے نا, رائٹ؟ اچھا عربی زبان کا علم کس سے حاصل کرو گے؟ وہ کوئی فرشتہ آ کے پڑھائے گا تمہیں؟ عربی زبان کا علم کوئی فرشتے سے حاصل کرو گے؟ وہ بھی کسی مولوی کے پاس جانا پڑے گا عربی زبان کا علم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یا کوئی تلاش کرنا پھر کسی اور سوٹڈ کوٹڈ سوٹڈ بوٹڈ عرب دان کے پاس جا کر کے عربی زبان کا علم حاصل کرنا. تو پھر وہ بھی تو تم خود نہیں ہو نا, وہ بھی تو کوئی دوسرا انسان ہی ہے نا. جو سوٹڈ بوٹڈ بے شک ہو جو تمہیں عربی سکھا رہا ہوگا, وہ بھی تو کوئی دوسرا انسان ہی ہے. تو اس پہ اوپر تم کیوں ٹرسٹ کر رہے ہو کہ وہ تمہیں صحیح عربی سکھا رہا ہے, رائٹ؟ اس کے اوپر کیوں ٹرسٹ کر رہے ہو کہ وہ تمہیں صحیح عربی سکھا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں غلط عربی سکھا دے. تو یعنی بے تکی نا, ایک دم بے تکی. وہی چونکہ شیطان نے اندھا کر دیا ہے, ضد کی وجہ سے, انانیت کی وجہ سے, اینٹھن کی وجہ سے شیطان نے اندھا کر دیا ہے, اس وجہ سے بے تکی کی لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تفسیر نہیں پڑھو اور ترجمہ پڑھو اور ترجمے سے تمہیں حقیقت مل جائے گی اور جھوٹ تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا, یعنی نہ, یعنی کوئی سر پیر نہیں ہوتا بالکل. ٹھیک ہے, نہ سر نہ پیر. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ مارکیٹ کے اندر یہ بھی چل رہا ہے آج کل, ترجمہ پڑھو ترجمہ پڑھو. بہرحال تو بات کیا ہو رہی تھی, ایمان لانے کی فکر, اس سے کیسے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا لکھا ہے انہوں نے, آخرت کی فکر ہوتی ہے اس کی وجہ سے غور و فکر کرتے ہیں اور پھر جزا کی نیت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ, اچھا جواب دیا, کیونکہ پیچھے جو ہم نے آیات میں پڑھا تھا نا اس میں یہی جواب تھا کہ ان کو مرنے کی بعد کی زندگی کی فکر لگی ہوتی ہے, اس وجہ سے پھر وہ بات کو غور سے سنتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں بغیر کسی بائس کے, بغیر اپنی ضد کے, وہ اگلے بندے کے دلائل کو سنتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, اور پھر جب دلائل پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں. تو ان میں ایمان کی فکر ہوتی ہے, یعنی ان میں آخرت کی فکر ہوتی ہے, تو پھر وہ ایمان تک پہنچا دیتی ہے ان کو, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان تک پہنچا دیتا ہے, یعنی نبی تک پہنچا دیتا ہے, قرآن تک پہنچا دیتا ہے. اور اس کا دوسرا جواب, ہم پہلے یہ میسیجز پڑھ لیں پھر اس کے بعد دوسرا جواب. اچھا, یہ بھی کہتے ہیں کہ مولویوں نے افطار کے وقت کی کوئی تفسیر ہی نہیں لکھی. مولویوں نے افطار کے وقت کی کوئی تفسیر ہی نہیں لکھی, یہ کیا مطلب؟ سوال لفظی جملہ ہی سمجھ نہیں آیا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جو نیو لوگ ہیں ان کو سٹارٹ کرنے کے لیے آسان ترجمہ تو ضرور زندگی میں ایک بار پڑھنا چاہیے نا, کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈائریکٹ تفسیر پڑھیں؟ بھائی جس کو کچھ پتا نہیں ہے نا, وہ اپنی عقل سے کام کر رہا ہے نا, تو وہ ترجمہ پڑھ لے. ٹھیک ہے نا, جیسے میں نے ترجمہ ہی پڑھا تھا سب سے پہلے. ٹھیک ہے نا, وہ ترجمہ بھی تو تفسیر ہی تھی نا یار, آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ ترجمہ ڈز ناٹ مین ایگزیکٹ لفظی ترجمہ, وہ بیسیکلی ایوری ترجمہ از تفسیر. یہ بیوقوفی اور جہالت ہے اصل میں, کہ جس کی وجہ سے ہم نے ترجمہ اور تفسیر کو تھوڑا الگ الگ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اصل میں ہر ترجمہ تفسیر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ترجمہ ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تفسیر میں پھر تفسیر کی فرق ہے کہ جو آپ جس چیز کو ترجمہ سمجھتی ہیں وہ بہت کم تفسیر ہوتی ہے, اور جو معرف القرآن ہے یہ بہت زیادہ تفسیر ہے اس کے اندر, بہت زیادہ تفسیر ہے اس کے اندر, بہت زیادہ تفسیر ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, ورنہ تو ترجمے کی جو لٹرل اصل ڈیفینیشن ہوگی نا, وہ تو ایک ایک لفظ کو الگ الگ اٹھائیں, ایک ایک لفظ کو الگ الگ اٹھائیں اور اس کو جو ہے وہ کسی دوسری لینگویج کے اندر جو ہے وہ آپ کنورٹ کر دیں, لیکن اس میں بھی پھر اسی ایک لینگویج میں اس کے کئی دوسرے معنی بھی بن سکتے ہیں اس لفظ کے. ठीक है, तो जिस तक ये समझ पहुंच गई ना, उसके लिए जायज नहीं है कि वो सो कॉल्ड तर्जुमे के जरिए से कुरान को समझे, ठीक है ना, उसको तो तफसीर ही देखनी पड़ेगी, तफसीर ही देखनी पड़ेगी। देखिए, समझ पहुंचने और समझ के ना पहुंचने में फर्क है। जिस तक ये बातें नहीं पहुंची हैं, वो तो फिर ऑटो पायलट पे चल रहा है ना, राइट। वो तो अल्लाह ताला उसको जैसे जैसे लेके चल रहे हैं, वो तर्जुमा पढ़ेगा या तफसीर पढ़ेगा या जो है वो कुछ और करेगा, उसकी फिक्र क्यों करती हैं आप? अपनी बात करें, अपनी बात, ठीक है ना, अपनी बात करें कि आप तक ये बात पहुंची है, ये एक्सप्लेनेशन पहुंची है, अब आपके लिए जस्टिफाइड नहीं है कि आप तर्जुमा पढ़ें, जो सो कॉल्ड तर्जुमा जिसको आप समझती हैं तर्जुमा, ये नहीं है, ठीक है। जिस तक नहीं पहुंची है भाई, जिस तक नहीं पहुंची है, वो अल्लाह के हवाले, अल्लाह ताला उसको जिस तरफ जो है वो गाइड करेगा उस तरफ करेगा गाइड, ठीक है। खामखा के उसूल बनाने की जरूरत नहीं अपनी तरफ से, उसको ये करना चाहिए तो उसको वो करना चाहिए तो उसको ये करना चाहिए, भाई अपनी बात करें यार। आप कौन से जो है वो शेख और मुक्तदा बन चुकी हैं कि आप दूसरों के बारे में फैसले करते रहे कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, अपने हिसाब से बात करनी चाहिए। अच्छा, क्या लिखा है कि वो उनको सुनकर अल्लाह की तौहीद पर कन्विंस हो जाता है और ईमान ले आता है, यानी जिसको ईमान लाने की फिक्र होती है वो ईमान ले आता है क्योंकि वो ओपन माइंड के साथ पढ़ रहा होता है। देखें, ये इतना करेक्ट जवाब नहीं बनेगा। अल्लाह की तौहीद पर कन्विंस होता हो जाता है और ईमान ले आता है। देखें, अगर पहले हम दूसरे जवाब भी पढ़ लेते हैं कि मुशाहिदात से भी ईमान मजबूत होता है, कायनात की चीज़ों पर गौर करते हैं लेकिन अवाम जाहिल होते हैं, तफसीर को भी तफसीर की जरूरत होती है, तर्जुमे से बात पूरी समझ में नहीं आती जब तक तफसीर ना हो। जी, जिस तरह तौबा किए बगैर गुजारा नहीं है, इसी तरह मौलवी के बगैर गुजारा नहीं है, इल्म वालों के बगैर, जी जिनको के आम इस तरह में मौलवी कह दिया जाता है, तो इल्म वालों के बगैर गुजारा नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने यही सिस्टम बनाया ना कि भाई किसी को इल्म दिया, ठीक है, और फिर दूसरों को उसका मोहताज बना दिया कि वो तुम इससे इल्म हासिल करो, ठीक है ना। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनको पसंद किया, मुस्तफ़ा बनाया, मुजतबा बनाया, उनको जो है वो उलूम दिए और दूसरों के लिए लाजम कर दिया कि अब उनसे इल्म हासिल करो, ठीक है ना। अब दूसरों के लिए लाजम कर दिया, उनमें से जिन्होंने लब्बैक कहा और नबी अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल कर लिया, वो आलिम बन गए। अब मजीद दूसरों के लिए लाजम कर दिया कि अब इनसे इल्म हासिल करो जिन्होंने मेरे नबी से इल्म हासिल किया, ठीक है। तो ये अल्लाह का चोज़न निज़ाम है। हमारे हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह को हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह कोट किया करते थे कि मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह, लेकिन बादल उसका वसीला बन जाते हैं। औलाद कौन देता है? अल्लाह, लेकिन माँ बाप उसका वसीला बन जाते हैं। इल्म कौन देता है? अल्लाह, लेकिन उस्ताद और शेख उसका वसीला बन जाते हैं, ठीक है। तो भाई अल्लाह ताला जिसको वसीला बनाए, अल्लाह ताला ने बारिश के लिए बादल को वसीला बना लिया, अल्लाह ताला ने जो है वो औलाद के लिए माँ बाप को वसीला बना दिया। किसी पत्थर को वसीला बना देते तो बिल्कुल कह सकता था अल्लाह तूने पत्थर को वसीला क्यों बनाया औलाद का, है ना, इंसान जो है वो पत्थर में से निकल रहे होते। अगर अल्लाह ने ये पसंद किया होता पत्थर, तो फिर पत्थर में से इंसान निकल रहे होते, राइट, या पत्थर में से बारिश निकल रही होती। अभी तो वो होता है ना, जब अजाब आता है तो बादल में से पत्थर निकल रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन पत्थर में से बारिश निकलना अल्लाह ताला अगर पसंद करते, लेकिन अल्लाह ने बादल को वसीला बना दिया, ठीक है ना। उसी तरीके से अल्लाह ताला अगर मोर को वसीला बना लेते कि भाई मोर के पास जाके इल्म हासिल करो, तो फिर मोर के पास जाके इल्म हासिल करना होता। अल्लाह ताला ने जो है वो मोर की बजाय मौलवी को जो है ना वो वसीला बना दिया, यानी जिसने पहले इल्म हासिल किया उसी को मौलवी कहते हैं ना भाई। ये तो नहीं कि उसके ऊपर कुछ पर लगे हुए होते हैं, सुरखाब के पर लगे हुए हैं तो इस वजह से वो मौलवी है, या उसके 10 हाथ हैं इस वजह से वो मौलवी है, या उसके 4 दिमाग हैं इस वजह से वो मौलवी है। भाई जिसने इल्म हासिल किया वो मौलवी है। अब यूनिवर्सिटी में जाकर के ना, यूनिवर्सिटी का जो चपरासी होता है ना, उससे इल्म हासिल नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? चपरासी से, वो भी तो यूनिवर्सिटी के अंदर है, चपरासी से जाके क्यों नहीं इल्म हासिल करते? नहीं, जिसने पहले इल्म हासिल किया ना उससे इल्म हासिल करेंगे, उसको हम प्रोफेसर कहते हैं। क्यों प्रोफेसर से क्यों हासिल करोगे, जाके डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं हासिल करते? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इल्म डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं हासिल करते? क्या अल्लाह नहीं है अलीम खबीर? प्रोफेसर से क्यों इल्म हासिल करते हो? बस वहां पे जो है ना वो नहीं, ये तो बस ना, ये तो बस पता नहीं क्या, बस खाम खा, ये बेवकूफी क्या, नहीं पूरी बस बेवकूफी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कोई तुक नहीं होती ना इन चीजों की, तो शैतान पर ऐसी लगाता है इंसान को बेतुकी बात हो। खैर, तो जो ईमान नाने की फिक्र रहते हैं, तो ऊपर जो उन्होंने जवाब लिखा है ना वो बड़ा मिलता जुलता और ठीक डायरेक्शन में जवाब है कि देखें अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत तो बनाई है ना। फितरत क्या है? अल्लाह की पहचान, अपने रब की, अपने खालिक की पहचान उसके अंदर डाली है। ठीक है, हर बंदा जो भी दुनिया में आता है उसके अंदर अल्लाह ताला ये फितरत डाल करके उसको भेजते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, अब जो अपनी फितरत से जुड़ता है या फितरत को जो है वो बचाता है छुपा दिए जाने से, दबा दिए जाने से, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है ना फिर अपने रब की मोहब्बत तो होती है ना। देखिए, रब की पहचान, रब की मोहब्बत, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है भाई। जब रब की पहचान होगी तो मोहब्बत कैसे नहीं होगी? वो तो हम उसको दबाते हैं, राइट, दबाते हैं मोहब्बत को, तो इस वजह से फिर वो दब जाती है, क्योंकि ये इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है कि भाई या तो तुम उसको दबाओ या तुम उसको खोलो। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उसको दबा देते हैं, तो अब वो मोहब्बत जो होती है वो छुप जाती है अल्लाह की, दब जाती है अल्लाह की मोहब्बत। लेकिन जिसने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके उस मोहब्बत को नहीं दबाया, यानी ना दबाने का इख्तियार इस्तेमाल किया उसने, तो अब तो अल्लाह की मोहब्बत है ना। अब उसकी ये मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि हमारे अजी क्या कहा करते थे कि घर वालों से पूछना होगा, वो बड़ा कहा करती थी उनकी एक क्या, खुशबू और मोहब्बत ये छुपाए नहीं छुपती, तो इस तरह का कोई एक जुमला कहा करते थे। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि एक तो ये कि ये नजर आ जाती है, राइट, लेकिन यहाँ पे वो रेलेवेंस नहीं है, बल्कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो कि फिर जो है ना वो इंसान को बैठने नहीं देती। ठीक है, उसको चैन से टिकने नहीं देती फिर, बल्कि ये उसको मुस्तरिब रखती है, मुस्तरब, बेचैन रखती है, कि ये अपने महबूब की तरफ जो है ना ये खिंचता है। ठीक है, और ये खूब से खूब तर अपनी मोहब्बत को बढ़ाने की फिक्र में रहता है हर वक्त। ठीक है, क्योंकि भाई महबूब तो है ही एक ऐसी चीज ना कि जिससे कि और मोहब्बत और मोहब्बत, हर चीज की हद है, मोहब्बत की कोई हद नहीं है। लेकिन हर चीज का एक लिमिट है, बस उससे ज्यादा ही हो सकती, मोहब्बत की कोई लिमिट नहीं है, ये तो बढ़ती है और बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, हाँ ये यस जी का कॉल था जिन्होंने यहाँ पे लिख दिया, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, ये हजरत फरमाया करते थे, मुश्क की जो खुशबू होती है ना ये भी छुपाई नहीं छुपती, और इश्क जो है ना ये भी छुपाई नहीं छुपता। तो यहाँ पर तो बात हो रही है कि ये बढ़ने वाली चीज है ना, तो अब जब इसने अपने मोहब्बत को कवर नहीं किया तो ये तो अब बढ़ेगा, तो जब बढ़ता है ना तो ये मुस्तकिल इस जुस्तजू में रहता है ये शख्स या ये आंटी, राइट, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, ये इस जुस्तजू में रहती है कि मैं कोई ऐसे वसाइल तक पहुंच जाऊं कि जहां से मेरे रब की मोहब्बत जो है ना ये इसको बूस्ट मिल जाए, इसको बूस्ट मिल जाए, यानी बिल्कुल ये, यानी ये बहुत ज्यादा तरक्की कर जाए। ठीक है, तो ये वो शख्स होता है जिसको ईमान लाने की फिक्र पड़ी हुई होती है। ठीक है, कि भाई मुझे कोई ऐसा सबब मिल जाए कि जिससे कि मेरी मोहब्बत जो है ना वो उसको एकदम एक तरबूबूस मिल जाए, तो जिसको ये फिक्र पड़ी होती है ना तो फिर कैसे, उसको सबब चाहिए ना, तो अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाने का सबसे बड़ा सबब कौन है? अल्लाह का रसूल। ठीक है, अल्लाह के रसूल से ज्यादा बड़ा कोई सबब जो है वो अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाने का है ही नहीं। ठीक है, तो ये अल्लाह के रसूल तक पहुंचता है और फौरन ईमान लेकर के आता है, और फिर जो है ना उसको हर हर चीज जो है वो फिर इधर उधर डिस्ट्रैक्शन की बजाय खालिसतन अल्लाह की तरफ पॉइंट कर रही होती है, यानी तौहीद की तरफ। ठीक है, तो ईमान रखने वालों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ईमान रखने की फिक्र करने वालों के लिए भी, यानी मोहब्बत को बढ़ाने की फिक्र रखने वालों के लिए भी ये फायदेमंद है। ठीक है, अदर इफ यू डोंट फाइंड आवर मोहब्बत इंक्रीजिंग ओवर टाइम, डज दैट मीन दैट वी डोंट रियली हैव मोहब्बत? नहीं, मोहब्बत है ना, वो तो काफिर के दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत है। तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, अगरचे आपने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, नान सेंटर लिखा हुआ है, लेकिन जो भी हैं ईमान वाले हैं, इंशाल्लाह क्लास के अंदर आए हुए हैं। हर दिल में ईमान की मोहब्बत है, यानी हर दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। ईमान वाला तो छोड़े, काफिर के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। ठीक है, तो बात सिर्फ बस ये है कि हमने जो है ना वो उसको दबाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो बोझ हमने उसके ऊपर डाला हुआ है ना, इसको जरा बस हटा दें, फिर देखें कि ये कैसी उड़ती है फिर। अच्छा, तो फरमाते हैं कि इंतफा के एतबार से उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ईमान लाने की फिक्र रखते हैं। ये मेवों और फलों का बयान हुआ जिसका जिक्र इजमालन वन्नवा में आ चुका है। ठीक है, अच्छा, और मुशरिक लोगों ने अपने एतिकाद में शयातीन को ऐसे अल्लाह का जिसके सिफात और अफाल ऊपर मजकूर हुए हैं शरीक करार दे रखा है। यानी कोई तुक होती है ना, किसको तुमने शरीक बनाया है, यानी शिरकत की तो कोई तुक हो ही भी नहीं सकती, शिर्क की तो कोई तुक नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी होता है ना यार, किसी ढंग की चीज को तुमने शरीक बनाने की गलती करी है, और एक बिल्कुल ही बेढंगी किस्म की चीज को तुमने शरीक बनाने की गलती करी है। ईसा अलैहिस्सलाम शयातीन में से तो नहीं था ना? ईसा अलैहिस्सलाम अच्छे अल्लाह के नबी, पाक सिफत, रूहुल्लाह, अल्लाह का अपना दिया हुआ नाम रूहुल्लाह। ठीक है ना, शिरकत तो उनकी भी कबीरा गुना, और बहुत, यानी जैसे कि आसमान टूट के गिर पड़े, इतने बड़ा गुना है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का शरीक बनाना। लेकिन एक दर्जा है पत्थर के बुत को अल्लाह का शरीक बनाना। अब पत्थर के बुत में और ईसा अलैहिस्सलाम में फर्क है ना, इसी वजह से जो कयामत के दिन अजाब होगा ना जहन्नुम के अंदर, तो ईसाइयों को अजाब जो है वो किस दर्जे का मिल रहा होगा? बिल्कुल जो ईमान वालों को, गुनाहगार ईमान वालों को अजाब मिल रहा होगा, उससे एक दर्जा नीचे ईसाई होंगे। ठीक है ना, और जो पत्थर के बुतों को पूजने वाले मुशरिक होंगे वो किस दर्जे में होंगे? बिल्कुल आखिरी दर्जे के अंदर, बिल्कुल आखिरी दर्जे के अंदर। ठीक है ना, जो मुनाफिकों के लिए आखिरी दर्जा है ना, तो वो मुनाफिक भी असल में कौन होंगे? वो पत्थरों के पुजारी मुनाफिक होंगे, पत्थरों के पुजारी मुनाफिक, लेकिन ऊपर से धोखा देते होंगे। तो ये नहीं है कि आखिरी दर्जा मुनाफिक का मतलब ये है कि वो कोई और किस्म की चीज होंगे, नहीं, वो भी पत्थरों के पुजारी वाले ही मुनाफिक मुनाफिक होंगे। हत्ता कि अल्लाह ताला पत्थरों और ऐसे मुशरिकों को जहन्नुम का ईंधन बना देंगे, जो पत्थरों की पूजा करते थे ना, तो जहन्नुम का ईंधन पत्थर और ये खुद, ये मिल करके जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। ठीक है, तो अब जो है ना, ये पत्थर और ईसा अलैहि सलाम, इन दोनों के दरमियान पत्थरों से ज्यादा करीब वो कौन हुए? शयातीन। ठीक है ना, तो शयातीन भी तो घटिया तरीन मखलूक में से है ना, अगरचे के पत्थर जैसी नहीं है, है जिन। ठीक है, तो लोगों ने अपने एतकाद में शयातीन को ऐसे अल्लाह का कि जिसके सिफात और अफाल ऊपर मजकूर हुए हैं शरीक करार दे रखा है, कि इनके बहकाने से शिर्क करते हैं और खुदा के मुकाबले में इनके कहने पर चलते हैं, हालांकि इन लोगों को खुद इनके इकरार के मुवाफिक भी खुदा ही ने पैदा किया है। यानी शयातीन को किसने पैदा किया? ये वही मुशरिकीन कहते थे, शयातीन को तो भी अल्लाह ने पैदा किया। ठीक है, तो जब अल्लाह ने पैदा किया तो फिर अल्लाह को कोई और नहीं मिला था अपना पार्टनर बनाने के लिए अपनी मखलूक के अलावा। ظاہر ہے اللہ نے مخلوق کے علاوہ کسی چیز کو تخلیق ہی نہیں کیا، تو پارٹنر بھی کسی اور کو نہیں بنایا، یعنی کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ اپنا پارٹنر بناتے ہیں. اللہ کے علاوہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق. ٹھیک ہے، تو مخلوق کو پارٹنر بنایا جاتا ہے کوئی، صحیح. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو خود ان کے اقرار کے موافق بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. جب خالق کوئی اور نہیں تو معبود بھی کوئی اور نہ ہونا چاہیے. اور ان مشرکین میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں اپنے اعتقاد میں محض بلا دلیل تراش رکھی ہیں، جیسے نصارہ حضرت مسیح کو، اور بعض یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور کو خدا کا بیٹا، اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. تو وہ پاک اور برتر ہیں ان باتوں سے جن کو یہ لوگ خدا کی شان میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک اور برتر ہیں ان کے ان بیودہ بیانات سے، یعنی یہ کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس کے کوئی اولاد ہو. ہی از بیونڈ اینڈ ابو دیٹ ایلیگیشن آف دیئرس. وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد یعنی نیست سے ہست کرنے والا ہے. فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ، نیست کا مطلب نتھنگ اور ہست کا مطلب یس دیر از سم تھنگ. ٹھیک ہے، تو تخلیق تو اس کو کہتے ہیں، عدم سے وجود ملانے کو، کسی پہلے سے موجود چیز کو جوڑ جاڑ کر کے کوئی نئی چیز بنا لینا، اس کو تخلیق نہیں کہتے، اس کو تو صنعت کہتے ہیں، مینوفیکچرنگ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ نیز سے ہست کرنے والا ہے. اور دوسرا، کوئی موجد نہیں، یعنی وجود میں لانے والا کوئی دوسرا نہیں، پس معبود بھی کوئی اور نہ ہوگا. تو اس سے تو شریک کی نفی ہوئی، اور اولاد کی نفی کی دلیل یہ ہے کہ اولاد کی حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی ہوں، اور ان دونوں کی مقارنت سے تیسری جاندار چیز پیدا ہو. ٹھیک ہے، تو اولاد کا یہ معاملہ ہے، تو اللہ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم تکن انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. ٹھیک ہے، تو جب صاحبہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہوگی؟ تو اس پہ کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اور آج بھی ایک اور بات ذہن میں آئی تھی، تو وہ بھی آج آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. لیکن ایک میسج آیا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، کہ اللہ نے شیطان کو طاقت دی ہے اس لیے وہ شیطان کو اپنا خدا سمجھتے ہوں. ہاں، تو وہ شیطان کو خدا سمجھنا جو ہے وہ پتھروں کو خدا سمجھنے سے ایک درجہ اوپر ہے. بہتر کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے اس کے لیے، بہتر تو نہیں ہے، لیکن وہی اس کے اندر. تو یہ جیسے وہ پیچھے بھی بات ہوئی نا ابراہیم علیہ السلام کے، اس میں کہ واقعے کے اندر کہ بھائی شمس اور قمر کو جو ہے وہ خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقتور تھے. ٹھیک ہے نا، ان کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تصرف کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. پتھروں کے اندر تو اس کی بھی طاقت نہیں ڈالی. ٹھیک ہے، بس یہ تو فرق ہے. پھر معبودوں میں بھی تو پھر فرق ہے نا، یہ معبود بالکل ہی بودا، اور یہ معبود جو ہے وہ کچھ طاقت والا، اور یہ معبود جو ہے وہ طاقت کے بجائے مطلب یعنی علمی طاقت والا. جیسے نبی کو جو ہے وہ جھوٹا معبود بنا لیا، تو نبی کے پاس کون سی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے؟ علم کی طاقت دی ہوتی ہے، روحانیت کی طاقت دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب معبودوں کے درجے بن گئے نا، پھر یہ معبود بڑا یعنی جھوٹے معبودوں کے درجے بن گئے. بہرحال، تو اب یہاں پہ جو فرمایا نا کہ بھئی یہ میاں بیوی بی ہوں، دونوں کی مقارنت سے تیسری جان، تو اللہ کی تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے تو کوئی بیوی نہیں. ٹھیک ہے نا، اب یہ جو ہے نا، کل بھی جو بات ہوئی تھی تو اس میں تھوڑا سا مزید بس اتنا سا عزیز کہنا چاہے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے نا، تو اس کی ایک لاجک بیان کرتے تھے. لیکن آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے بھی بلکہ اس کے اوپر تھوڑا بہت لکھ کر کے بھیجا تھا کلاس کے بعد. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ قرار دیتے تھے، اس کی لاجک کیا بیان کرتے تھے؟ کہ بھائی بیٹا جو ہے وہ ماں باپ دونوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے تو کوئی شوہر تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارے جو آزادی کے سب سے بڑا چیمپئن جس کو ہماری پاکستان سٹڈیز کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے، کون؟ قائد اعظم سے بھی بڑھ کر کے آزادی کے کون تھے بھائی؟ سر سید احمد خان. تو سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی، لکھتا ہے کہ مریم کی شادی ہو چکی تھی، मरियम अलैहि सलाम की शादी हो गई थी, वो एक था एक शौहर, तो ईसा अलैहि सलाम जो है ना वो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए थे। ऐसी बातें करके तुम खामखा अपने गोरे बादशाहों को जो है वो नाराज कर देते हो अपने से, और वो तुम यानी ऊट पटांग बातें कर रहे हो कि ईसा अलैहि सलाम बगैर जो है वो माँ बाप के पैदा हो गए थे। भाई ईसा अलैहि सलाम सॉरी मरियम अलैहि सलाम की शादी हो चुकी थी, ये सर सैयद अहमद खान ने तफसीर में लिखा है, और वो हमारा सबसे बड़ा आजादी का लीडर। जाहिर है ऐसी आजादी के बाद फिर वही होगा जो हो रहा है, जो ऐसे लीडरों के साथ आजादी मिली हो ऐसी लीडरों की वजह से, तो फिर वो आजादी ऐसी आजादी होती है जैसे कि हम आजाद हैं, है ना। अल्लाह ताला में अकल सलीम अता फरमाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब झूठ है। मरियम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम दिए थे बगैर शौहर के, ठीक है, और ये कोई बड़ी बात नहीं थी अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इसका जवाब देते हैं कि भाई हमने ईसा को ऐसा पैदा किया जैसे आदम को पैदा किया, माँ और बाप दोनों के बगैर, तो हमने ईसा को जो है वो बगैर बाप के पैदा कर दिया। कौन सी मुश्किल बात थी भाई इसके अंदर, ठीक है। तो अपने अकल के ऊपर जो है वो तोड़ रहे होते हैं उन चीजों को। तो बहरहाल, लेकिन ये लोग ये कहते थे कि बगैर बाप के जो है वो औलाद नहीं हो सकती। तो अब इन्होंने क्या किया, या इनसे शैतान ने क्या करवाया, यार अगर बाहर तो कोई बाप नहीं है इसका तो फिर अल्लाह बाप होगा, ठीक है ना, नऊज बिल्ला, अल्लाह बाप होगा फिर ईसा अलैहि सलाम का। तो यानी इनका मफरूजा क्या था कि चूंकि मियाँ बीवी के बगैर औलाद नहीं, ठीक है ना, इसी बुनियाद पर उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया ना। तो अल्लाह ताला उन्हीं की दलील को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब तुम खुद ये कहते हो कि एक पार्टनर के बगैर औलाद नहीं हो सकती, तो अल्लाह का कौन सा पार्टनर है भाई, ठीक है, अल्लाह का कौन सा पार्टनर है, तो अल्लाह की तो कोई साहिबा ही नहीं, अल्लाह की तो कोई बीवी नहीं, तो फिर अल्लाह की तुम औलाद क्यों बोलते हो, ठीक है। तुम्हारे अपने मफरूजे के मुताबिक जब दोनों मियाँ बीवी के साथ औलाद होती है तो फिर मरियम अलैहिस्सलाम को बीवी का दर्जा नहीं देते, ठीक है, वो बाद में तो फिर एक मैसअप किया है ना। अच्छा दलील कोई नहीं इनके पास, ना इनकी किताब के अंदर जो लिखी हुई कोई दलील मौजूद है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन अपनी जो है वो करीबी है उल्टी सीधी, और अल्लाह ताला ने इनसे ब्लंडर्स करवाए हैं कि खुद जो है ना अपनी बात को अपनी किताबों से प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, अक्सर तो ईसाई मुसलमान होते भी इसी वजह से हैं, कहते हैं कि ट्रिनिटी जो है ना ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट रबिश है, हमें कभी समझ में नहीं आई ये ट्रिनिटी क्या चीज होती है, ठीक है। अच्छा इफ यू डोंट फाइंड आवर, अच्छा ये तो हो गया था जब बस क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, आगे जल्दी से चल रहे हैं कि अल्लाह के औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि उसके कोई बीवी तो है नहीं, और अल्लाह ताला ने जैसा इन लोगों को पैदा किया, वह खलकहुम और जमीन और आसमान को पैदा किया, बदी और समावात, इसी तरह उसने हर चीज को पैदा किया, ठीक है। तो भाई अल्लाह ताला ने तखलीक को अपने लिए पसंद किया, पैदा यानी तखलीक करना, वो तो लफ्ज मुसीबत उर्दू जुबान जो है ना ये एक मिक्सचर किस्म की जुबान है ना, तो अच्छाई भी इसके अंदर बहुत है, क्योंकि मिक्सचर के अंदर कुछ मिक्सचर्स अच्छे भी तो आ जाते हैं ना फिर, लेकिन मिक्स होने की वजह से इसके अंदर कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो लफ्ज पैदा इस्तेमाल करते हैं हम तखलीक के लिए भी पैदा इस्तेमाल करते हैं, और जो है वो जिसको जन्ना कहते हैं उसके लिए भी पैदा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बोर या बेर, ठीक है, उसके लिए भी पैदा का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। तो अब तर्जुमा पढ़ करके कुरान मजीद समझने वालों का अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है, इधर भी पैदा का लफ्ज उधर भी पैदा का लफ्ज उर्दू जुबान के तर्जुमे के अंदर, सो कॉल्ड तर्जुमे के अंदर, ठीक है। तो भाई अल्लाह ताला ने तखलीक को अपने लिए पसंद किया कि मैंने तखलीक करनी है, ठीक है, वो जो जन्म देने वाला जो तरीका होता है ना वो जन्म देने को अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद नहीं किया, ठीक है, अल्लाह ताला ने वो अलग निजाम रखा कि भाई जन्म जो है ना ये तो फिर इंसानों और जिन्नों के दरमियान ये वाला सिलसिला चलेगा, और फिर उनको अपने जो औलाद होगी उस औलाद के ऊपर डिपेंडेंसी भी होगी, ठीक है, मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, अल्लाह ताला ने अपनी कोई डिपेंडेंसी नहीं रखी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्म देना ही नहीं, अल्लाह ताला ने जन्म का फैसला ही नहीं किया अपने लिए, तखलीक का फैसला किया कि मैंने तखलीक का नहीं। अच्छा अब यहाँ पे आकर के ये तो बात कर दी ना, ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात थी कि जो कुछ लोग होते हैं ना वो फिर भी नहीं मानेंगे, बड़ी अकली दलाइल दे दी आपने, बड़े अपने तौर पे आपने जो है ना वो 100 out of 100 स्कोर कर लिया अकली दलाइल दे करके, जैसे कल बात हो रही थी ना कि भाई एवरीथिंग हैज हैज ए लॉजिक, ठीक है ना। तो अब आपने जो है ना वो दावत तबलीग का काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो अकली दलाइल दे रहे हैं, अकली दलाइल दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। ठीक है, अकली दलाइल देना जरूरी है, बलावुल मुबीन के अंदर अकली दलाइल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो अकली दलाइल आपने दे तो दिए, लेकिन आगे से कोई और वो उल्टा सीधा कोई अपनी सो कॉल्ड अकली दलाइल दे दे, ठीक है, या कहते हैं कि भाई नहीं बस मैं नहीं मानता, ठीक है, तो क्या दावत तबलीग रुक जाएगी वहां पर? नहीं, ठीक है, दावत और तबलीग रुकनी नहीं चाहिए, चाहे वो आपके बेहतरीन अकली दलाइल को भी मानने से इनकार कर दें, यहां पर भी दावत और तबलीग का काम नहीं रुकना चाहिए। तो फिर अब क्या करें, अकली दलाइल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब क्या करें भाई? अब जो है ना फिर आखिर में जो चीज रह जाती है ना, जो कि एक्चुअली शुरू से भी चल रही थी, लेकिन शुरू में जब दावत का काम किया जा रहा होता है ना, तो उसमें अकली दलाइल गालिब गालिब होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप जो है वो यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, यानी आप जो है वो बलागुल मुबीन कर रहे होते हैं, आयात तिलावत करके सुना रहे होते हैं जिनके अंदर अकली दलाइल मौजूद है, ठीक है। तो ये शुरू में जो दावत तबलीग होती है ना, इसमें गालिब जो है वो दलाइल होते हैं, मगरूब क्या चीज होती है इसके अंदर, जो कि साथ साथ चल रही होती है दलाइल के, नहीं हाईलाइट द कॉन्ट्रडिक्शन, तो अकली दलाइल ही के जरिए से आप कर रहे होते हैं ना। तो व्हाट इज मगलूब, जो कि अकली दलाइल के साथ साथ चल रही होती है, दुआ, हिकमत, नहीं ये तो समझ लें कि दिल के अंदर, आपके दिल के अंदर चल रही है ना, दुआ चल रही है उनके लिए, ठीक है। हिकमत ये अकली दलाइल ही होते हैं जो कि आप हिकमत के साथ उनके साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी क्या चीज चल रही होती है, दाई, यानी दाई जो है, एक तो गालिब दावत और तबलीग का काम कर रहा है अकली दलाइल के जरिए से, हिकमत की बातें करके, कॉन्ट्रडिक्शन उनकी जो है वो हाईलाइट करके, लेकिन एक मगलूब भी तो है ना जी, मगलूब दावत जो चल रही है वो क्या? बिल्कुल सही जवाब दिया, अखलाक, किरदार। ये जो अखलाक और किरदार है ना दाई के, उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक, ये भी तो दावत हो रही है। लेकिन अभी चूंकि बातचीत चल रही है ना, तो अभी दलाइल एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं आपके, तो इस वजह से ये अखलाक और कैरेक्टरिस्टिक वगैरह ना, ये अभी एक, यानी गोया कि एक मगलूब हालत में चल रहे हैं। लेकिन जब आपके दलाइल एग्जॉस्ट हो गए, अगला बंदा नहीं मान रहा, यहां पे भी दावत रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। बल्कि अब जो है ना वो अखलाक वाली दावत, कि आप ऐसे हो कि जो आप बात कह रहे हैं ना, वो बेशक उसकी अकल में समझ में नहीं आ रहे, लेकिन आपको वो बतौर हुज्जत के तस्लीम कर ले, आपके पर्सन को बतौर हुज्जत के, जैसे सुनते रहते हैं ना कि हजरत को देखा तो दिल ने ये कहा कि ये सूरत झूठी नहीं हो सकती, हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह के बारे में भी हमने सुना, हजरत जी से ही सुना, ये झूठा शख्स नहीं हो सकता, यानी जो ये कह रहे हैं बस सच ही होगा, ये झूठ तो बोल ही नहीं सकते ऐसे शख्स, ठीक है ना। तो ये चीज जो होती है ना, फिर ये दीन की असल दावत, या फिर ये अब ये गालिब हो जाती है जब अकली दलाल एग्जॉस्ट हो गए, अब ये गालिब गालिब हो जाता, वरना पहले भी ये था, ये नहीं कि पहले जो है वो बदअखलाकी चल रही थी अकली दलाल के साथ, लेकिन अब ये गालिब हो जाते हैं, ठीक है। तो दीन का जो सच है ना, ये हुज्जतुल इस्लाम, जब ये तो कुछ मशायख को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है ना, खुद जैसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का लकब ही क्या है, हुज्जतुल इस्लाम अल बालिगा, ठीक है भाई। उनका खैर वो तो दलाइल की वजह से इमाम गजाली हुए, उनके दलाइल ऐसे जबरदस्त होते हैं कि यूं वो इस्लाम की हुज्जत है, लेकिन कुछ लोगों का किरदार इस्लाम की हुज्जत होता है, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ना, फिर इनके पास लेकर के आ जाना चाहिए बस, ठीक है ना, इनके पास लेकर के आ जाना चाहिए और इनके पास लाके बस बिठा देना चाहिए, ठीक है ना। बातें बातें भी करनी है, चलो करो तो उन्हीं के पास आकर के बातें करो, आपके बस में अब नहीं होगा, आपने जब अपने अपने दलाइल एग्जॉस्ट कर लिए, अब इनके पास लेकर के आ जाओ। अब ये जो लोग होते हैं ना, ये कौन लोग होते हैं? ये सादिकीन में से होते हैं, सादिकीन, ये सादिकीन लोग होते हैं, ठीक है। अब इनके साथ एक खास बात ये होती है कि इनका ईमान इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है अल्लाह ताला की जात के ऊपर और नबी अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर। ये फिना लोग होते हैं ना, फिना, इन्होंने अपने आप को शेख के सामने फिना कर दिया होता है, अल्लाह ताला ने इनको फिर फिना फिर रसूल अता फरमा दिया होता है। क्या मतलब कि अल्लाह के दीन के ऊपर ये फिना, इनको अल्लाह के दीन के अलावा कहीं और कामयाबी नजर आ ही नहीं रही होती, ये फिना फिर रसूल भी हो जाते हैं और फिर ये फिना फिल्ला भी हो जाते हैं, ठीक है। फिना फिर रसूल होने के बाद अगला दर्जा जो है फिना फिल्ला। ये वो लोग होते हैं कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ये ऐसे लोग होते हैं, ये दो आलम से खफा होते हैं अल्लाह की वजह से। ये किसी से राजी होंगे ना तो अल्लाह की वजह से राजी होंगे, वरना ये राजी नहीं होंगे किसी से, ये किसी और वजह से राजी नहीं होते किसी से, ये सिर्फ अल्लाह की वजह से राजी होते हैं, ये फिना फिल्लाह लोग होते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, इनका ईमान ऐसा हो जाता है कि फिर फरमाया वमई युम बिल्लाही यहदी कल्बा, ठीक है। जो अल्लाह ताला पर ईमान लेके आता है ना, ठीक है, यहां पर ऐसे ईमान की बात हो रही है, यहदी कल्बा, अल्लाह ताला इनके दिलों को फिर गाइड करते हैं, अल्लाह ताला इनके दिलों को गाइड कर, ठीक है, कि क्या बात करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। तो जब अकली दलाइल दाई के एग्जॉस्ट हो जाए ना, वैसे तो फायदा हो जाता है अकली दलाइल से, लेकिन अगर एग्जॉस्ट हो जाए बस बस उसके बाद जो है वो अब इनके पास नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर अल्लाह ताला जो है ना फिर इनके वास्ते से कोई ऐसा काम करवा देते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी नहीं होती तो वहां भी नहीं करवाती। ये नहीं कि हर बंदे को आप पकड़ के ले आएंगे तो अब जो है वो मुसलमान हो जाएगा, वो जो है वो बात को मान देगा, तो अल्लाह के। लेकिन असबाब के दर्जे में क्या करना है, अकली दलाइल इस्तेमाल करना है, अपना इखलाक इस्तेमाल करना है, या फिर ऐसे लोगों के पास लेकर के आ जाना है कि जिनका अखलाक जो होता है ना फिर वो उनकी हुज्जत, इस्लाम की हुज्जत की दलील होती है। ये लोग जो होते हैं ना, ये खैरख्वाह होते हैं, इनकी रग रग रेशे रेशे के अंदर खैरख्वाही बसी हुई होती है, ये बेगर्ज लोग होते हैं, ये बेगर्ज, इनका अपना कोई गर्ज नहीं होता, बेतमा, ठीक है, फिक्र रखने वाले, इनको अल्लाह की मखलूक की, इनको अपनी सबसे ज्यादा फिक्र होती है और फिर अपने बाद इनको अल्लाह की मखलूक की फिक्र होती है, ठीक है। ये होती है सादिकीन की अलामत। ईमान वालों को भी हुक्म है इनके साथ नथी हो जाओ, और हिदायत के लिए भी जो है ना वो फिर आखिरी सबब क्या है, ऐसे लोगों के पास लेकर के आ जाओ, ठीक है। और फिर हिदायत तो अल्लाह ने अपने हाथ में बिलाखिर रखी ही है, इनका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन ये सारी बातें हम असबाब के दर्जे में कर, ठीक है। शुड वी वेट टू एग्जॉस्ट आवर दलाइल फर्स्ट एंड देन ब्रिंग देम, शुडंट वी ब्रिंग देम व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन आवर दलाइल, भाई डिपेंड करता है कि आप खुद किधर खड़े हैं ना। अगर आपके पास माशाल्लाह अच्छे दलाइल हैं, बहुत कुछ है, तो फिर आप जो है वो उनको दलाइल से करते रहें, लेकिन हर बंदा तो दलाइल वाला नहीं होता ना, इल्म हासिल करने में टाइम लगता है, और तो फिर जो जूनियर्स होते हैं तो उनके लिए यही होता है कि वो पहले ही पकड़ करके शेर के पास ले, ठीक है ना। हमारे दादाजी क्या करते थे, मुर्शिद आलम के पास, जो इस किस्म के होते हैं ना, मंतकी, गैर मुकल्लिद, और वो उठा करके बस यहाँ पे लेकर के आ जाते, ठीक है। अब वहां पे जो बातें होती थी ना, तो वो तो खैर हजरत मुर्शिद आलम ने तो भाई उनका चेहरे ही वो मा मा हादा बशरा इन हादा इन मलकुन करीम, मलकुन करीम। अब वो हर बंदा तो मलकुन करीम नहीं नजर आ रहा होता ना, लेकिन अल्लाह ताला फिर दिल को जब गाइड करते हैं ना, तो फिर दिल को दिल से राह होती है और बात ऐसी हो जाती है कि अल्लाह ताला करवा देते हैं। तो बहरहाल जिसके पास दलाइल है तो वो अपने दलाइल को एग्जॉस्ट करे, जिसके पास दलाइल ही नहीं है तो फिर वो उठा करके इधर ही लेकर के आ जाए, या अपने अखलाक के जरिए से जो है वो दावत तबलीग का काम करते रहे, ठीक है। हो सकता है आज हमारा आज आखिरी रोजा था, कुछ पता नहीं, चांद आ जाता है नजर, ठीक है, तो आज अगर नजर आ गया तो फिर कल यहाँ पर ईद होगी, तो रमजान मुबारक के दरस कुरान का आज ये आखिरी फिर सेशन था, और वरना फिर कल भी एक और सेशन हम इंशाल्लाह करेंगे। पाकिस्तान इंडिया में तो वैसे भी कल रोजा ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी अब तक किया उसके अंदर जो भी खैर थी वो यकीनन अल्लाह ताला की ही तरफ से थी, जो भी कमी कोताही कमजोरी गलती हुई वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी तरफ से थी। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाए, और जो खूबियों को जो खैरें अल्लाह ताला ने हमारे वास्ते से अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ताला ने ही तौफीक अता फरमाई, और अल्लाह ताला ही उसको हमसे कबूल फरमा ले, और उसके बदले में अल्लाह ताला अपनी जन्नत फिरदौस में हम सबको जगह अता फरमा दे, कहने वाले को भी सुनने वालों को भी अमल की भी तौफीक अता फरमा दे, आने वाली जिंदगी को गुजरी हुई जिंदगी का कफारा भी बना दे, गलतियों को आगे दोहराने से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमा ले, हर किस्म के फितनों से, आजमाइशों से, परेशानियों से, कर्जों से, मर्जों से, इल्लत से, किल्लत से, जिल्लत से, हर किस्म की तकालीफ से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे अहलो आयाल की हिफाजत फरमाए, हमारे दोस्त अहबाब की हिफाजत फरमाए, पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दे, और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन मोहब्बत करने वाले अपने बंदों और बंदियों के दरमियान शामिल फरमा करके अपनी लता अता फरमा दे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
Recording stopped.